أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1978 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت 27 سے ہو رہا ہے. 2:5/2:7. سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس قسم کے نامساج موسم کے باوجود آپ احباب تشریف لے آئے ہیں. ذوق قرآنی کے شدت کا یہ مزہ آ رہا ہے جس سے واقعی مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا صاحب کا درس میں یہ نقطہ ذہر بات تھا کہ وہ نظام، وہ معاشرہ، وہ الدین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا اور جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اور جسے عملاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھیوں نے والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے دنیا میں قائم کر کے دکھا دیا، اور اس کی خصوصیت کبرا یہ تھی جو قرآن کے دو لفظوں میں بیان کر دی گئی کہ الملک یوم اذن الحق بالرحمن. اس دور میں، اس نظام میں اقتدار اور کنٹرول، یہ کنٹرول کا لفظ خاص طور پہ اس دور میں قابل فہم ہے، پارلیمنٹ کے سدسیوں کے اوپر ہو، بلکہ اب تو انسانوں کے قلب و دماغ پہ بھی کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے ملک، اس میں یہ سب چیز آ جاتی ہے کہ وہ نظام وہ ہوگا کہ جس میں اقتدار، کنٹرول اور وہاں تو نظم و نسق کہہ لیجیے، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو افراد معاشرہ کی پرورش ایسے کریں گے جیسے ماں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. چار لفظ ہیں عزیزہ نعمان، غور کیجیے. اس سے جامعہ نقشہ مفہوم کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، وہ نظام جو خدا کی طرف سے ملتا ہے، جو پرانی اقدار اور حدود کے تابع متشکل ہوتا ہے. اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ حق پر مبنی کنٹرول، یہ میرا حق بھی تو ہے، حق پر، ٹرتھ پر مبنی کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھ میں جو خدا کی صفت رحمانیت کو مشہود کرنے کے لیے اس نظام کو قائم کریں. اور صفت رحمانیت یہ کہ وہ افراد مملکت کی، اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو انسانوں سے بھی آگے جو اعلان فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اعلان آپ کو یاد ہوگا کہ اگر غزلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی بات پوچھ ہوگی. آپ سے کہا گیا کہ آپ نے انسانوں سے آگے بڑھ کے حیوانات تک کو بھی اپنے اس خاتے کے اندر لے لیا، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں وما من دابت فی الارض ہے، رزق کی ذمہ داری جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے اس کے لیے دابت کا لفظ ہے، وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، ہر ذی حیات کے لیے وہ لفظ بولا جاتا ہے. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدود مملکت کے اندر ہر ذی حیات اور ہر متنفذ کی، جس کو اپنی پرورش اور نسل و نما کے لیے ان ذرائع کی ضرورت ہے، وہ ہماری ذمہ داری کے اندر آ جاتے ہیں. اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان ہی نہیں بلکہ اگر کوئی کتا بھی اور مدینے میں بیٹھے ہوئے دجلہ کے کنارے پر مارے ہیں جو اپنی حضور مملکت کی اس دور میں آخری حد تھی، کہ اگر وہاں بھی تو ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی بات چھوٹ ہو سکتا. یہ ہے وہ چیز کہ الملک یوم اذن الحق للرحمن، یہ ہے اس کے معنی. ورنہ ہمارے نزدیک، جیسا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، ان سب چیزوں کو تو اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے قیامت پر، اور پھر وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ بس اس دن خدا کے کنٹرول میں، جو ہے اب خدا کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے یہاں کائنات میں، یہ کائنات تو چھوڑ رکھی ہے اس نے ابلیس کے کنٹرول میں، اور آپ انتظار کر رہا ہے کہ وہاں یہاں آئیں گے جب لوگ، تو وہ وہاں پھر کوئی انتظام ایسا ہوگا तो वो वहां ये कंट्रोल और इकतदार खुदा का होगा, रहमान का। यहां कोई रहमान वगैरह का इकतदार नहीं है। आप पढ़ते रहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो कहता है ठीक है खुदा की ये सिफात बरहक है, लेकिन ये वहां जाके मिलेगा। पास अजान के मन न मानम बचे तार साहिब अहमद, तो ऐसी पूछना रहा तो मलमर आ गया है, नहीं उठे जाके मिलेगा तुम इन्हों में तो ऐसे मिलेगा। वो मस्जिद के महराबों में मत मुस्वली हों या खानका वाले, उनके सब के रिज की जिम्मेदारी आपका, और आपके रिज की जिम्मेदारी खुदा पर, और खुदा का वादा पूरा होगा क़यामत में जाके। ये यहां की बात हो रही है, ये उस निजाम की बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों से जहां मुतकद्दम हुआ और जिसका मुतकद्दम करना है उम्मत का फरीजा था। उम्मत का फरीजा नहीं, वो तो जामा जो उम्मत नास कहता है, वो कहता है उनको तो खास खुशियत नहीं थी खास उम्मत। जो उम्मत भी इस कुरान को अपना गाइड बना लेगी, अपना रहनुमा बना लेगी, उसका फरीजा होगा कि वो इस किस्म का निजाम कायम करेगी जिसमें इकतदार उन लोगों के हाथ में हो जो खुदा की जिले का रहमान लोग को पूरा करने वाले हैं। और जिसने ये निजाम कायम हुआ उसने कहा है कि वह अशरा कतुल अर्द नूरे रबिहा, ये जमीन अपने नशोनुमा देने वाले के नूर से जगमगा उठेगी दीवाने में, और ये होते रहेगा। इन्ना वादुल्लाह हक, ये खुदा के वादे हैं, ये उसका कानून है, हो ही नहीं सकता कि ये पूरा ना हो। ये होगा नक्शा दीवाने मन। पूछते हैं आज की सलाह में इस्तेमाल की निजाम मुस्तफा ने कहा क्या होगा, कैसा होगा, क्या सूरत होगी। इनके नजदीक तो वो जो चार सजाएं हैं बस दो दे दीजिए तो निजाम पूरा हो गया। निजाम का नक्शा, निजाम का तसव्वुर, उसकी तफसील कुरान ने दो गद्दों में बयान कर दी कि अल मुल्क यौम इज़्निल हक को दे रहमान दे। आए कभी आज ही गई, पिछले वर्ष में हम यहीं तक आए थे, और अगला हिस्सा इसका ये है कि वकाना यौमन अलल काफिरीना असीरा, और वो दौर अब लफ्ज पहले यही दे दीजिए तर्जमा जिन्होंने किया ना, काफिरों के लिए वो दौर बड़ा ही सख्त हो जाता है। और काफिर कहा तो इन्होंने बस मुसलमानों के खिलाफ, ये हिंदू हुए, ये मुशरिक हुए, ये ईसाई हुए, ये हिंदू हुए, वो सब काफिर, वह उनके ऊपर वो दौर बड़ा सख्त होगा काफिर का जो तर्जमा किया। ये तो हमारी इस्तलाह है, हम ही किसी की प्रशासन करा दे रहे हैं। कुरान की इस्तलाह तो जो कोई भी कुरान के इस निजाम से इनकार करेगा, सरकशी बरतेगा, वो काफिर है। वो मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में पैदा हो, सवाल तो ये है ही नहीं कि तुम शूद्रों के यहाँ पैदा हुए हो या ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए। किसी के यहाँ पैदा होना, किसी कौम के अंदर पैदाइश की रूह से दाखिल हो जाना, ये तो सवाल ही नहीं है। जो भी इससे इनकार करते हैं, जो इससे सरकशी बरतते हैं, और अगर इसके बुनियादी माना में आ जाइए तो वो तो बड़ी अजीब चीज है। झगड़ा के माने किसी चीज को छुपा के रखना, डांटे रखना, जाहिर ना होने देना। और फरमाया आपने कितनी दूर जाता है कुरान। आप दीजिए कि ये डेफिनेशन या इस्तलाह जो है इसका मफहूम अमली की तरह उसी हो जाता है। जो भी इस निजाम की मुखालफत करने वाले हैं, सरकशी बरतने वाले हैं, उन्होंने इसको दबा के रखा है, ढांप के रखा है। होना जाए आज तारा छवे पैगंबर कहीं, ये जो कुछ वो कहता है इस बार इबलीस के पूरा प्रोग्राम ये है। वो अपने मशीनों से, अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर से कहता ये है कि एक ही काम करने का है, होना जाए आज तारा छवे पैगंबर कहीं बात, बाकी सच्चे सारा है। ये ना होने देना, ये है आज तारा ना हो जाए उनके लिए वो दौर। लफ्ज़ तो असीर है, मैंने कहा है ना कुरान के अल्फाज से तो ऐसे आगे गुजरना नहीं चाहिए। वाकई ठीक है, यूसुफ के मुकाबले में उस आता है, आसानी के मुकाबले में जिसको तंगी उचरत मुशक्कत मेहनत सख्ती कहते हैं, लेकिन इसके बुनियादी माने तो बड़े गहरे हैं। बात समझ में फिर आती है, उचरत होती है ये ढोल की गुत्थी में इस किस्म की उलझने पैदा हो जाना कि वो सुलझ ना सके, और सुलझ ना सकने से या कोई भार ना सकने से जो इंसान को तो परेशानी है, तो चिड़चिड़ापन पैदा होता है ना, वो इसमें ब्लाइंड एली में आ जाना, कोई रास्ता नजर ना आवे पलाह का, कोई शक्ल कोई सूरत सुझाई ना दे, जिसे हम कहते हैं इतनी उलझने पैदा हो जाए कि पता न चले कि वो सुलझेंगे किस तरह से। देख रहे हैं आप अपने माता को तो क्या हो रहा है, यही जानना नहीं है जिसे वो ये कह रहा है। यानी वो बुद्धियां इस किस्म की पैदा हो जाती हैं जो वो फिर सुलझाई नहीं जाती, पैदा करना अपने हाथों की होती है। वे आदि ही कुरान कहता कि ये सब चीजें तुमने पहले से गुजरा पाती है, वो आप देखते हैं ये बसंत आ रही है, वो बच्चे किस मुसीबत में बचा होता है, वो दौर में जो गुजरा पहुंची में फिर सुलझा उसको सकता नहीं है। अजीब कैसी है, तो आज हम उसी दौर में से गुजर रहे, खुद पैदा करता गुत्थियां इस तरह से हमने सख्त कर लिखी है कि वो सुलझाने की लाख कोशिश कीजिए सुलझ नहीं रही। ये है वकाना यौमन ललता जरीना हसीरा सुनिए की दो सूरत में कि इस निजाम को जो तुमने थाम कर दबाव कर रखा हुआ है इसको आश्कारा दीजिए, सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। गुत्थियां तो रोशनी में सुलझा करती है ना, तारीखियों में तो नहीं सुलझ, तो रोशनी तो एक ही है, वो खुदा की किताब की रोशनी है, उसको दबा रखा है उन लोगों ने, गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वकाना यौमन अलल काफिरीना असीरा कतियत उस दिन ये होगी सुनी जानम की कतियत, व यौम यअज्जु ज़ालिमु अला यदैहि यकूलो या लैतनि इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला। उस दिन ये वो लोग के जिन्होंने वही जालिम का लफ्ज आ गया, मैंने उस दिन ये कहा कि जालिम के माने वो ही जो हम अपने जहन में जिसको जालिम कहते हैं, जिन्हें हम मजलूम कहते हैं, ये मासूम ये आवाम ये फॉलोअर ये मुतबईन जिन्होंने उनको ये कुछ बना दिया था, वो सारे ही जालिम होते हैं। जालिम के माने ये हैं वो शख्स जिस चीज को जहाँ होना चाहिए जिस मकाम पे किसी को होना चाहिए वहां ना उसको रखा जाए, खा नीचे ले आया जाए खा ऊपर पहुंचा दिया जाए। जालिम उस दिन अपनी उंगलियां काटे और ये कहेंगे कि एक आज मैं भी इस कारवां में शरीक होता कि जिसके कारवां सादात ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी इनकी मैयत में अगर होता तो आज ये कैफियत तो न होती। या वायदा का लैता नहीं लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ए काश मैं फुलां पार्टी में शरीक न हुआ होता, मैंने फुलां को अपना दोस्त न बनाया होता। उस दिन ये बात ये कह कि मैं इस कारवां में शरीक हुआ होता, फुलां को मैंने अपना दोस्त न बनाया होता। अब देखिए आगे ये बात ये लकद अज़ल्लनी अन ज़िक्र बादा इज़्ज़ानी, ये बात तो वाज़े तौर से हमारे सामने आ चुकी है, ढकी छुपी नहीं रही है, लेकिन इसके आ जाने के बावजूद ये मेरी पार्टी के लोगों ने मेरे उन दोस्तों ने जिन्हें मैंने खुद दोस्त बनाया था उन्होंने मुझे गलत रास्ते की ऊपर डाल दी। ये बात नहीं थी कि वो सही रास्ता वाजिया तौर पे हमारे सामने नहीं आ सकता, कुरान आने के बाद तो रीजा ने मन कोई भी ये कह नहीं सकता कि सही रास्ता हमारे सामने नहीं आया। और कम अज कम ये कौम जो मुद्दई है आज भी गह गुजरे जमाने में वो रवायतन सही हर घर के अंदर कुरान का नुस्खा तो मौजूद होता है, अगर के तकद्दुस के एतबार से उसे ऐसी ऊंची जगह रखा जाता है जो इंसानी दस्तरस से बाहर हो सकता है, इस तरह लपेटा जाता है इसको कि वो कोशिश के बगैर सुनने ही ना पाए, है तो हर घर के अंदर रखा हुआ। वो कहता है कि इसके आ जाने के बाद फिर कौन सी बात थी, वो उसने मुझे बताया दूसरे रास्ते पे ले गए। अभी बात आती है वो बात के जो कुरान की मैं ये कहूंगा कि अमूद है अजीम तरीन चीज है ऐलान है, यहां बड़ा उनका नुकसान आता है यहाँ कहा है कि एक आज मैंने फुलहाल को अपना दोस्त न बनाया होता, फुलहाल के साथ के रीत न हुआ होता, तो अपने किसी दोस्त की बात कर रहा है ना। और काट कह भी रहा है वह कान शैतानों ने इंसान है फजूल, बात असल में ये है, मैं फजूल के माने बाद में बताऊंगा, तो शैतान है जो वो कुछ करता है। और हमने तो समझ रखा है ना कि वो शैतान कहीं भी बाहर है और वो सब कुछ करता रहता है। तो तसव्वुर जो भी हमारे जहन में उस शैतान का काम तो उसके दिल में हमने यही लगा रखा है कि वो गुमराह करता रहता है, लेकिन जरा उसका तसव्वुर उसकी उसकी पावर उसकी सलाहियतें उसकी कुव्वतें यानी दुनिया में हर जगह मौजूद होता है। या अल्लाह, अब कभी गौर भी किया है? गौर किया होता तो हमारी ये हालत क्यों होती? ये गौर करने के लिए तो बुझाए जाते हैं जिससे सब कुछ मनवाया जाता है। ये शैतान शैतान सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक होता चला आता है। कभी सोचा भी है कि उसको हम किन सिफात से मुत्तसिस करते हैं? एक ही वक्त में दुनिया में हर जगह मौजूद होता है ना, हर इंसान को भी गुमराह करता है, सारी दुनिया में हर इंसान के साथ। जिनको माजल्ला खुदाफी की तरह हुआ मासूम ऐना मासूम तुम, जहां भी तुम हो वो तुम्हारे साथ है। ये पोजीशन हम दे रहे हैं खुदा के खिलाफ, जो अगर रहा उसका दुश्मन है जिसे हम कहते हैं। आप मालूम है कहां से ये तसव्वुर है? ये मजूर जिन्हें कहते थे, अब हमारे यहाँ तो पारसी कहते हैं, ये मजूसी मजहब था ईरान का, जरदश्त जिसका बानी था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो बड़े अरूज पे था, ईरान की मजूसीत आपने सुनी होगी। उन्हीं क्या है, अगर आंखें खुली हुई हों तो मालूम हो गया, ये सारा जितना भी हम आज मदद लिए देते हैं मजूसीत है ईरान की। उसमें मजूसीत में ये तसव्वुर दिया गया था डुअलिज्म का, दो खुदा, एक नेकी का एक बदी का, एक रोशनी का एक तारीकी का, एक खैर का एक शर का, एक अहरमन एक यजदान, दोनों को मुसावी कुवतें दी गई बराबर बराबर की, दोनों एक अखाड़े में पहलवानों की तरह खड़े किए हुए थे, दोनों में बराबर की कुश्ती होती। और ये उन दोनों की कसमकश ये थी कि हर दौर में हर जगह हर सानिया हर लम्हा में क़यामत तक जारी रहेगी अहरमन और यजदान। तो खुदा के मुकाबले में कि दूसरा खुदा खड़ा किया हुआ था। आप देखते हैं कि वो जो अहरमन था हमारे यहाँ, वो शैतान के तसव्वुर में ज़हन में आया, और वो सारी खसूसियात या सिफात जो उन्होंने अहरमन को दे रखी थी खुदा के मुकाबले में दूसरा खुदा, वो हमने शैतान को पहना रखी हुई है। पहली सिफत ये देखी है कि सारी दुनिया में बजात वक्त मौजूद हर शख्स के साथ, ये तो खुदा की सिफत है। इतनी बड़ी कुव्वत के इंसान उसके सामने बिल्कुल आजिज, कुछ नहीं कर सकता, क़यामत तक के लिए मौजूद, मर भी नहीं सकता। देखते हैं ये वही तसव्वुर है या नहीं मौजूदियत। अभी नमान जो एक बात और बता दी, कुरान या दीन या इस्लाम समझ में आता है जब पहले ये बाकी जो गलत मजाहब थे उनके तसव्वुरात के जब तक मुताले आप नहीं करते, तकाबली मुताले किसे कहते हैं, यही मालूम आपको कि पहले क्या अकायद चले आ रहे थे। कुरान के अकायद निकल कर काम नहीं आते, ये तो उनमें से एक ही चीज की इतार उसकी तदीद करता चला जाता है, उसको रिज्यूम करता चला जाता है, एक सानिये में उसको रिज्यूम करता है, अपने मुस्बत कंक्रीट पॉजिटिव अकीदा उसकी जगह रख देता है। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए ना, वो वाक्य आज उसकी तरदीब वो करता है। मैं कह ये रहा था कि हमारे यहाँ के शैतान का ये तसव्वुर, ये जो हर इंसान के साथ मौजूद कहा हुआ है ना, साथ मौजूद बाहर से नहीं खड़ा होता, हर इंसान के अंदर होता है वो शैतान उसका, और हर इंसान का अपना अपना शैतान होता है, वो खुद ही शैतान होता है। जब भी इंसानी जज्बात सरकश होकर गालिब आ जाए अदायत खुदाबंदी से, ये शैतानत कहलाती है। इंसान का अपना रोल है, खारिज तो नहीं कोई करता, उस खारिज में ऐसा वजूद नहीं है जिसको हमने जिसे बदले नीजियत से नवाज रखा है कि दुनिया में हर शख्स के साथ और हर जगह मौजूद मादल हर शख्स के अंदर मौजूद है। इंसान के अंदर कुवतें भी हैं खुदा ने, सलाहियतें कुछ भी हैं। ये उन सलाहियतों का इस्तेमाल है कि जो हदायत और गुमराही कह लीजिए, वो जिसे आप मलाइका की सिफत कहते हैं और शैतान की सिफत कहते हैं वो कह दीजिए, उन सलाहियतों को इंसान इस्तेमाल किस तरह से करता है। अगर उनको मफाद परस्तियों के रास्ते में इस्तेमाल करता है, अपनी जात की हो या अपनी पार्टी की, अपनी कौम की, इंसानियत के मुकाबले में जब वो इन्हें इस तरह इस्तेमाल करता है तो ये भी कसमत अपने जज्बात की तस्कीन इस तरह चाहता है कि जो खुदा की हदूद को तजावुज करके फान के इस्तेमाल की जाए, वो अपनी सलाहियत, ये जो इंसान अपनी सलाहियत को गलत अंदाज से इस्तेमाल करता है ये है कसमत। कभी तो अपने अंदर का तकाजा होता है, कभी किसी साथी का तकाजा, वो जो तुम रुला देते हैं। और आमतौर पर बड़े पैमाने के ऊपर जो दुनिया में इस किस्म की सरकशियां, मफाद परस्तियां, गुमराहियां ये फैलती हैं, ये हमेशा जिन्हें कहेंगे ना जुट नाल हमला, वो हमेशा एक पार्टी के अंदर होता है, ग्रोह के अंदर होता है, धातु के अंदर ग्रोह रखता है। ये हमारे यहाँ के जो ठग थे वो एक अलग कम्युनिटी थी। इस दौर में भी जिसे आप पार्टी सिस्टम कहते हैं वो पार्टी के अंदर होता है। ये है जिन्हें वो कहा है कि अल्लाह खुदा को अपना खलील या दोस्त न बना, ये है वो शैतान। यानी इंसान का अपनी सलाहियतों को गलत तरीके पर इस्तेमाल करना ये शैतान है, और उन्हें हदूद खुदाबंदी के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करना ये इस्लाम। और इसी से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद गरामी के जो कहा करता हूँ कि वो हीरो की तरह चमकती है, सही हदीसें जो है जो आपने फरमाया, आपने फरमाया कि हर शख्स का एक एक हदीस होता है। जब आपने कहा हर शख्स का, तो सहाबा ने पूछा कि क्या आपका दीन भी है? नहीं, हाँ मेरा भी इबलीस है। नहीं जी, वो ठीक, आपने क्या किया? कहने लगे मैंने अपने इबलीस को मुसलमान कर दिया। हाँ, इससे बेहतर तस्वीर हो सकती है जीवा ने मानी? मैं कह रहा था कि तुमने कुरान क्या कहता है, कहा इसने ये था कि काश मैं फलां को अपना दोस्त ना बनाता और कैफियत मेरी ये ना होती, उसने मुझे इस तरह से गुमराह कर दिया, ये उसके मुतालिक है। और आगे वह कानस शैतान और इंसान है, फजूला कुरान कहता है देखा शैतान किस तरह से इंसान को गुमराह करता है। ये शैतान कौन है? वो पहले जिसने उसने कहा है कि लम अत्तखिज फलानन खलीला, वो जो दोस्त कहता है कि मैंने उसको क्यों दोस्त बना लिया, क्यों उसको आदमी में शुरू कर दिया। कुरान कहता है देखा शैतान कैसे इंसान को गुमराह करता है। यहाँ जाहिर है कि ये तो उस आदमी का फिक्र है, ये तो उस दोस्त का नाम है, वो तो उसका नाम है जो जिसने इसको गुमराह यू किया है। एक आज मैं उसमें ना होता, मैं इनमें होता, शैतान को ये चीज कही अल्लाह से फजूल की वजी लग जाए। यहाँ साथी था ना वहां, कहा ये भेड़ों का गल्ला होता है, सहरा होता है, जबान होता है, जंगल होता है, हर तरफ खतरा होता है भेड़ियों का। गल्ले में वो साथ रहती है, भेड़ तो महफूज रहती है। बेहतरीन गठरिया तो वही होता है ना जो गल्ले के अंदर रखे भेड़ों को। अगर किसी मुकाम के ऊपर जबान के लिए इधर उधर हर जगह खतरा हो भेड़ियों का, किसी कोई भेड़ गल्ले से अलग हो जाए हट का, तो ये चीज है जिसे खजाना कहते हैं कि उस कमबख्त में मैं उसकी पार्टी में शरीक हुआ था, अब जब ये तबाही आई है तो वो मुझे जू छोड़ के अलग हो गया, जैसे गल्ले से भेड़ को अलग करके जबान में छोड़ दिया जाता है। तो जिसका जीता है जबर के गया उसकी मफाद परस्तों की पार्टियों के अंदर यही होता है ना जीजा ने मान। हर खतरे के वक्त में वो जिनके साथ खुल्लक के ताल्लुक आप बनाए जाते हुए होते हैं, यूं छोड़ के अलग हो जाते हैं जैसे गल्ले से भेड़ को अलग कर दिया जाता है कि जिस भेड़िए का जी चाहे उसको जबर दे। काश मैं उसे न पकड़ता, वो तो मेरे साथ ये कर गया है। अब वो आयत आती है अजीजा ने मान, जिसको मैंने कहा है कि उर्वतुल रुस्ता और सेंट्रल पिलर है, बुनियादी अमूद है, सुतून है सारे कुरान का। नक्शा यही है, यूं समझ लीजिए कि खुदा की अदालत है, उसके हजूर ये सब कौमें आ रही हैं, वहां नजर आ रहा है कि इस कारवां के साथ कौन था, किसने इसका छोड़ा साथ, कौन कैतान और इब्लीस की सरकर्दगी में अपनी पार्टी के साथ चला, ये सारा कुछ वहां यूं है जैसे मुकदमा पेश हो रहा है। और वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आते, नक्शा देखिए ईज़ान ए मन कुरान का, इस उम्मत का नक्शा, ये वहां मौजूद है। अभी हम कह रहे थे कि ये जो काफिर का लफ्ज आता है वो हिंदुओं के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए आता है। सुनिए अजीज़ान ए मन के उस जगह बड़ी तवज्जो से सुनिए, मुर्तकिब कीजिए तवज्जो को अपने कि इस कैफियत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और जैसे दूर से आवाज दी जाती है, वकाल रसूल, रसूल कहेगा या रब्बे, ए मेरे रब, ए मेरे नशोनुमा देने वाले, मेरी एक बात सुनिए। ये जो तेरे सामने कौम खड़ी है, ये जो अपनी नस्बत मेरी तरफ करती, ये जो मुसलमान कहलाती है अपने आप, ये जो तेरे सामने खड़ी है, पता क्या किया है ना, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरान महजूरा, इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। अजीज़ान ए मन देखिए मंज़र कुरान का, जिसे आप क़यामत का दिन कहते हैं, उस क़यामत के दिन खुदा के हुज़ूर इस अदालत के अंदर ये उम्मत खड़ी है। ये सवाल हो रहा है कि तुमने ये क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, क्या ना हुआ, जैसे कहते हैं अमालनामा खड़ा है। वो एक शाहिद जिसे कुरान ने कहा है सबसे बड़ा गवाह, वो सबसे बड़ा गवाह है, गवाह है अजीम, वो जो अदालत की तरफ से एक गवाह आया करता है, न मुद्दई की तरफ से न मुद्दालय की तरफ से, वो एक शाहिद आजम आता है, दूर से पुकारता है कि मेरे रब, इनके आप गिराए एक एक करके क्या गिनाते हैं, मैं बताता हूँ इस कौम ने, इन्ना कौम मेरी कौम, अजीज़ान ए मन कौम ही कहा गया है, जहाँ मेरी कौम कहा है, बाकियों की जो कौमें हैं उनसे तो तुम जानो और वो कौमें जाने, इनका मैं बताता हूँ कि क्या हुआ इनके साथ, इन्होंने क्या किया वहाँ। काल रसूल यार मेरे इन्ना कौम तफ़ज़ू हाज़ल कुरआन, हाज़ल कुरआन महजूरा, इस कौम ने इस कुरान को तरसा। अजीज़ान ए मन बड़ी बुनियादी चीज, सारे कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो जिसे आप कहते हैं क़यामत में, ये एक ही ऐलान है कौमी अपनी कौम के खिलाफ, जिसे आज हम उम्मत अपनी कहते हैं, उसके खिलाफ ऐलान ये, इल्ज़ाम ये, दावा ये है, क्या किसी और चीज के मुतल्लिक नहीं कहा, सारे कुरान में आप देख जाइए, यही कहा इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़, सिर्फ कुरान को छोड़ने का कुरान ये किया था, इस मेरी कौम ने ये था जुर्म इसका और ये हुआ। अब आपने देख लिया, रोज हम कमीशन बैठाते हैं, कमेटियां बैठाते हैं, तहकीकात करते हैं, असबाब ज़वाल उम्मत के लिए भी सर चीज होती है कि क्या हुआ इस उम्मत के साथ, सब कुछ हम करते हैं, कमेटियां बैठाती हैं, कमीशन का सर्च भी होती है, वो तो एक बिगड़े में कह दी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत उम्मा के बाद किसी और कमेटी बैठाने की जरूरत है। वह माज़ल्लाह हम ये कहते हैं कि ये कुछ काफी शहादत नहीं थी, खुदा के हजूर पूरी उम्मत के सामने की जा रही है, ये नहीं हम आओ किसी भी सर्च करें, बात कुछ और होगी या और भी होगी, यानी ये काफी नहीं है जो वहां ऐलान किया गया, इसके साथ जरूरत क्या है किसी कमीशन का खाने की। बकाल रसूल हो यार सुहाना महजूद, ये है वो सदा एक ही सदा एक ही जरूरत, और रसालत और शहादत रसूल सलम की, अदालत खुदाबंदी, इसके बाद किसी और तहकीक की जरूरत, तफ्तीश की जरूरत, इसके बाद जुर्म साबित नहीं हो जाता, इसके इस गवाही के बाद किसी और तहकीक की जरूरत है, और अदालत खुदाबंदी में ये गवाही कैसे हो रही है, और अदालत खुदाबंदी ने कोई मजीद क्वेश्चन भी नहीं किया कि हाँ भाई ये भी एक बात हुई, अच्छा और भी हम पूछ लेना, कुछ नहीं कुरान में काफी है शहादत ये, तो जुर्म तो ये है, हमारी जिल्लत का सबब ये है। और यहाँ एक और बात, ये महजूरा का तर्जुमा न दीजिए करता गया अभी तक कि छोड़ दिया कुरान को ना। आओ अरबों से पूछें कि महजूर के माने क्या है, फिर समझ में आएगा कि इस साहिब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफाती बारगाह ने कहा क्या। हम पुराने लोगों को तो ये मालूम है, नई जनरेशन वालों ने तो ये गाय भैंस के वो गले वगैरह ये देखे होंगे, ये खरना देखे होंगे, इस किस्म की भैंसें बैल या इस किस्म की गाय वगैरह ये आमतौर पर होती हैं जो रस्ता चुरा के भाग जाया करती हैं, उनको भी ले जाना होता है। तो आपको मालूम है करते क्या हैं, एक छोटा सा रस्ता लेते हैं, उसका एक सिरा उसके पांव के साथ बांधते हैं और दूसरा सिरा उसकी सींग के साथ बांधते हैं, वो होता है छोटा सा। उसकी कैफियत यह होती है कि जिस रफ्तार से आजादाना वो जानवर चलना चाहता है वो उससे नहीं, उसे इतनी रफ्तार से नहीं चलना देता, वो जो उस रस्सी की जितनी लंबाई होती है वो उतनी रफ्तार से ही चल सकती है। उसकी आजादी को मुकय्यद कर दिया जाता है अपनी इस रस्सी के साथ कि वो चले तो हमारे पैमाने की जो रस्सी है उसके मुताबिक चले, अपनी आजादी की रफ्तार से ना चले। अरब इस किस्म के जानवर को माजूर कहा करते थे, सोचिए क्या कह दिया कुरान, कुरान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है वहाँ, मेरी इस कौम ने तेरी इस किताब को जिसके लिए तूने इसको आजाद छोड़ा था क्योंकि अपनी रफ्तार से चले दुनिया में, इसने किस्म किस्म की रस्सियां बांध दी उस कुरान के साथ, कुरान तो बाकी रहा लेकिन उसको चलाया इन्होंने अपने पैमानों के मुताबिक अपने मंशा के मुताबिक, आजादा ने उसे अपने रफ्तार से नहीं करने दिया इस कौम ने। ये है जो मौजूदा ने मन मैं कहा करता हूँ मौजूदा ने मन, उस कौम को देखिए, उसकी जुबान को देखिए, कुरान के इंतहाब को देखिए, क्या लफ्ज लाता है। और फिर सोचिए कि सारी कहानी एक लफ्ज में कह जाता है या नहीं, इस कौम ने कुरान के साथ ये भी किया कि इसको छोड़ा, मैंने जैसा कहा है हर घर में मरी हर जुबान पे इसके तस्कर कितना दोहराया जाता है, इसको दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसकी दोहराई, एक रात में इसका पति किया जाता है, लेकिन इसकी रफ्तार के साथ क्या किया गया, इतनी रस्सियां इस पर डाली गई है कि जो जिस मंशा के मुताबिक हम चाहें बस उतना ही ये चले, उससे आगे न चले। मुझे अफसोस है कि वो फैसले वो चीज वो पर्चा अभी है छप नहीं चुका, मैं चाहता था इस दर से पहले आ जाए अगला पर्चा पूरे इस्लाम का, ये अजीब इतफाक है, उसमें एक मेरा बड़ा मखसूस मकाला आ रहा है पुराने कुरान के खिलाफ, गहरी साजिश खतरनाक साजिश, वो साजिश पुराने कुरान की किसी आयत की ही तस्वीर के, वो कौन कौन सी रस्सियां हैं जो हमने इस कुरान के पांव में बांध रखी है कि जिसे हम चाहते हैं ये उतना ही चले जितना हम चलाना चाहते हैं, अपनी आजादी से ना चले। कुरान भी बाकी रहा, ये भी नहीं हुआ तो साहब बिल्कुल हम काफिल हो गए ऐसे छोड़ दिया या ये उसके साथ, उसमें मैंने बताया कि किस किस किस्म की रस्सियां बांधी है, तफसील आपको उसमें नहीं, चंद फिक्रों में बात करूं, ये रस्सियां हमारे अकायद की, ये रस्सियां हमारे मसालिक की, ये रस्सियां वो जो हमारे मजहब की, जिसे इस्लाम हम कहते हैं दीन नहीं है, ये तो मजहब हो चुका हुआ है, इसमें राय क्या है, ये अकायद पुराने करीम में सूरह फातिहा के बाद पहली सूरत की पहली आयत यह है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल्मुत्तकीन, यह किताब इसमें कोई चीज शक को शुभ जो कहनी चाहिए, शक को शुभ और रैब की बात नहीं, हुदल लिल्मुत्तकीन ये हदायत उस सूरत में दे सकती है जब इसके मिन जानिबिल्लाह होने में शक को शुभ कोई न रहे, सीधी सी बात, जरा शक पैदा हुआ इसकी किसी एक चीज के अंदर भी तो ये फिर हदायत नहीं दे सकती। शक और यकीन दो मुतजाद चीजें हैं जी जाने माने, जरा सा भी शक नहीं आ जाए پورے کے پورے یتیم کے پہاڑ کو گرا کے رکھ دیتا ہے. یعنی دو چیزیں یہ اکٹھی ہو ہی سکتی. یہ نہیں کہ تھوڑا سا شک آ جائے تو چلیے 1% شک ہے, 99% یتیم ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس پر. یقین باقی ہو ہی نہیں سکتا, رہ ہی نہیں سکتا اگر اس میں ذرا سا شک ہو. پہلی چیز اس قرآن کے خلاف جو سازش کی گئی, خود اس کے متن میں شکوک پیدا کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو اس طرح مرتب شکل میں دے کے ہی نہیں گئے تھے, کتاب کی شکل میں یہ تھا ہی نہیں. وہ کتاب دینے والا جہاں سے ابتدا کرتا ہے, پہلا ہی ورق جو ہے اس میں پہلا لفظ جو ہے غالباً کتاب. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کتاب تھی ہی نہیں. اچھا تو بھائی اس نے کہہ دیا معذر تمام کی بڑا رجوع نے کتاب نہیں لگی. حیران ہوں گے آپ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں, یہ پکی روٹی والوں کی باتیں نہیں ہیں. آپ کے ہاں جن احادیث کی کتابوں کو صحیح ترین مسند ترین کہا جاتا ہے, یہ ان کی روایات کہ یہ شکل میں تھا ہی. رسول اللہ اس طرح مرتب کر کے لے ہی نہیں گئے, یوں ہی ان کے پتوں پہ کوئی ہڈیوں کے اوپر کوئی جلدوں کے اوپر کوئی ادھر ادھر تھوڑا بہت لکھا ہوا تھا. اور یہ بے کچھ بھی تھا ایسا بھی لکھا ہوا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھیلے میں ڈال رکھتے تھے, اس کے اندر ڈالتے چلے جاتے اور وہ تھیلا تھا جو دے گئے. چلیے نا تھیلا ہی صحیح, بعد میں صحیح تھیلے کو یعنی قرآن کریم کی اگر جو ترتیب نہ رہے, جو جس ترتیب میں یہ دیا ہے کتاب, تو ترتیب کا نام ہے عزیز آنے مان. بنیادی دخل ہوتا ہے کتاب کی معنی میں اس کی ترتیب کے ساتھ. تو وہ جو ایک جھولے کے اندر یہ سارا کچھ ہلا ملا کر کے مخلوط شکل میں دے رکھا جائے, اس میں تو سوال ہی نہیں ہے کسی ترتیب کا جو وہاں دے گئے. پھر کیا ہوا رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی یہ نہیں ہوا کہ پہلی چیز جو ضابطہ ہے آئین ہے اس مملکت کا بھی اس کو تو دیکھنے مرتب شکل میں نہیں ہے. وہ تو بعد میں ایک جنگ تھی, اس جنگ کے اندر بہت سے حافظ قرآن کے جو تھے وہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ اس طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ختم ہو جائے گا. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سنی کا شروع کہ بھائی قرآن کو کچھ مرتب کرا لینا چاہیے. انہوں نے کہا یہ آج جا صبح 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 جا جو ٹھیک کام کو رسول اللہ نہیں کر گئے میں کیسے کروں. یعنی ڈر گئے کہ یہ تو بدعت ہو, صحیح تو نہیں کتابیں جو حدیث کی ہیں صحیح تو نہیں حدیثیں ان کو مانا جاتا ہے آج. بہرحال بعض مباحثہ کے بعد حضرت عمر کو تو یہ سمجھ گیا نا کہ وہ بڑا ڈاڈا تھی, تو وہ پریویل کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں کرنا چاہیے. تو وہ پھر یہ نہیں کہ کچھ جو حافظ اتنے ہیں, یعنی خود یہ بھی خلفاء جو ہیں یہ خود حافظ قرآن ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے. اور اگر قرآن کا حافظ ہے تو قرآن کو کسی ترتیب کے ساتھ اس نے حفظ کر رکھا تھا نا ان حافظوں نے, یا انہوں نے بھی شدہ شدہ ٹکڑے ٹکڑے جو تھے یاد کر رکھے تھے. حافظ قرآن شروع سے آخر تک جس کو آپ کہتے ہیں وہ کسی ترتیب کے ساتھ یہ سب کیا ہوا تھا نا. انہوں نے استاد کی نماز کو بٹھاتے وہ ترتیب کے ساتھ بولتے جاتے جو لکھتے جاتے بات ختم ہوئی. نہیں یہ نہیں کیا, ان کو نہیں بلایا, کمیٹی ایک بٹھائی اور وہ بھی حضرت زید بن ثابت ان کو ان کا چیئرمین بنایا. کسی خلیفہ کو نہیں, ان میں سے نہیں خلفاء راشدین میں سے نہیں تھے, ان کو بتایا. اور انہوں نے ڈھنڈورا پیتا کہ آؤ جس جس کے پاس کوئی قرآن کا ٹکڑا ہے لاؤ. وہ لاؤ جناب, وہ لاتے گئے اور وہ بیچتے گئے اپنی طرف سے. کہتے ہیں بڑی پکی ہاتھ سے بھی وہ لیتے تھے, سب کچھ بھی کرتے تھے. یعنی اس طرح سے وہ ٹکڑے جو تھے ہڈیوں کے چلو کے پتوں کے لیے سارا کچھ کرتے تھے. وہ لاتے گئے وہ یہ جمع کرتے تھے کتاب دوں گی جمع کرتے گئے. تو اس نے دیکھا یہ یہ تو ہندری حدیثیں ہیں, میں حل کر ان کے نزدیک میں حل کر رہا ہوں جنہیں یہ تسلیم کرتے ہیں. صاحب اس کے اندر دو آئے رہی ہیں, ایک تو وہ آیا تھا کہ وہ اس میں یہ تھا کہ ماں کتنے مہینے تک دودھ پلائے بچے تھے, یہ چھوڑ دیجیے یہ تو اہم نہیں. دوسرا یہ جو زنا کی سزا رجم ہے نا سنسار کرنا, دوسری آیت وہ تھی جس میں یہ لکھا ہوا کہ یہ تو بہت بڑا قانون ہے نا. وہ آیت اس قرآن میں تھی نہیں جو انہوں نے جمع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم تو رسول اللہ کے زمانے میں صاحب کو پڑھا کرتے تھے, یہ قرآن میں آئی ڈوڈیا پڑی پتا لگائیں کہ کیا ہوا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہیے کہ وہ تو رسول اللہ کے گھر میں بھی انہیں پتا ہوگا. ان کے پاس گئے انہوں نے کہا ہاں بیٹا ٹھیک ہے, یہ آج بھی قرآن یہ ڈھونڈ کے پتے تو لکھی ہوئی تھی वो बट्टा अंदर कमरे में रोज के पलंग के पाए की तरफ रखा हुआ। जब हजूर की वफात हुई तो हम सब तो घर वाले जो थे परेशान हो गए वफात के जमाने में, इसके अंदर लगता लगती थी कैसी थी, बाहर मेरी बकरी बनी हुई उसने उस परेशानी के आलम में हाउसी के आलम में रखी तो आई अंदर भाग के गई और वो पता था भी खत्म हो गया। यानी उस आयत जो दो आयतें हैं उनका वजूद ही दुनिया से नाजायज हो गया। अगर दोनों से लोगों ने कहा कि आप शहादत देते हैं, हम पढ़ा करते थे सूर्या के जमाने में शहादत में भी हो जाता है जी की थी है अगर वो खा गई बकरी तो क्या हुआ, आप उसे कुरान में क्यों नहीं रख देते। उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं अगर मैं रख दिया तो लोग कहेंगे, आप उसे कुरान में क्यों नहीं रख देते। उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं अगर मैं रख दिया तो लोग कहेंगे कि उम्र ने कुरान में इजाफा कर दिया, इजाफा कर दिया सुबह 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 मैं ऐसा काम कर सकता। उन्होंने कहा ये तो हुक्म है कि जना की सजा कुरान में नहीं मौजूदा कुरान में, ये नहीं है, ये तो हुक्म की बात है तू इसको रखो। आपने कहा कि नहीं इसका वाया मीडिया निकालते हैं, हम दरमियानी एक रास्ता निकालते हैं, कुरान में तो ये ना रखी जाती लेकिन हुक्म इसके मुताबिक है। तो अब ये जो कहते हैं ना जना की सजा का अनुसार करना है वो इस कुरान में नहीं है, जो हमारे आपके पास जो उम्मत के पास मुतवाजर जरा आता है ये वो आयत है जो बकरी खा गया। जाले कल किताब ला रहे बकरी, कुरान कहता है कि ये वो अल किताब, अल किताब कैसी है जिसमें पूरी चीज शर्क शुभ की नहीं। ये इतनी सी एक रवायत जो है ये कम शर्क तो शुभ की रवायत है, ये तो किसी एक या दो आयतों के मुतालिक बात हुई पता नहीं। तो पहली की तरतीब कुरान के सिलसिले में जमाए कुरान के सिलसिले में ये रख दी खद है, एक रस्सी तो जू बांधी। अब मौजूदा कुरान की रस्सी वही है जो इन आयतों के बगैर है, इतना ही ये फरमाते हैं हमारे गाँव के मुफस्सिर मौलवी साहब अपनी किताबों में। ये जो कुरान दिया गया ना इस तरह से उसके हरूफ पर नुक्ते नहीं थे, बात समझ में यूं नहीं आएगी। आप जेन में जरा तसव्वुर में लीजिए, बे पे से अरबी जुबान के हरूफ हैं, इन पे आप नुक्ते ना दीजिए, इसी तरह से कुल लाइनें डाल दीजिए और फिर पढ़िए इसको ये क्या है। जीन है से दाल दाल, रे जे सीन सीन, स्वाद स्वाद, सोए सोए, एम हैं बगैर नुक्तों के रख दीजिए और पढ़िए, कैसे नुक्ते नहीं देखा थे? एक नुक्ता कहीं इधर से उधर डाल दीजिए जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है माने में सने मान दे एक ही शकल में वो दे लिखा हुआ हो, कोई उसे बात पढ़ेगा कोई उसे बात पढ़ेगा, सीधी सी बात है दोनों पढ़े जा सकते हैं। अरबी जुबान की ग्रामर में एक बड़ी चीज है जिसको इराब कहते हैं, ये आखिर में जाते हुए जबर जेर पेश जो होती है, याद है मानी कि ये जो आखिरी चीज ये किस्म की चीज किसी और जुबान में नहीं होती, अरबी की खसूसियत है ये एक जबर और जेर के फर्क से फाइल से मकबूल, मकबूल से फाइल जीव तक बन जाता है। कहते हैं इनके ऊपर इराब भी नहीं, पहले झोले में डाले हुए ये टुकड़े इस तरह किया उन्हें जमा, उनके ऊपर ना नुस्ते ना उनके ऊपर इराब, बाद में जाके कहीं हजार दिन यूसुफ के जमाने में बनी मैया के जमाने में जाके वो कहते हैं उनके ऊपर नुस्ते भी लगे इराब भी ये कभी उलमाए में बैठ गए और ये कुछ किया, यदि जैसे उलमा के जेल में आए जितनी जितनी रस्सियां जी चाहिए उन्होंने कुरान को बांध, ये जो कुरान आपके नुस्ते वाला इराब वाला है या हजार दिन यूसुफ के जमाने, इसके दरमियान एक चीज और भी मौजूदी साहब लिखते हैं, ये इनका नहीं होता, मैं इसलिए नाम देता हूँ कि आप लोगों को जरा आसानी हो जाए मालूम करने में, क्योंकि आज भी ये आपके यहाँ से ये हकायत चले आ रहे हैं और मुफस्सर है अपनी तफसीरों में ये लिखते हैं कि ये जो कुरान थे ना ये एक ही कुरान नहीं था, अल्लाह ताला ने सात जुबानों में नाजिल किया था, रसूल ने भी सात जुबानों में किया, हजरत उस्मान के जमाने तक सात जुबानों में था, हजरत उस्मान ने फजल ताला हजरत उस्मान ने छह जुबानों वाले कुरान को अपनी जवाबदेही के मुताबिक जला दिया, एक बाकी रखा, ये जो आपके पास कुरान है उन सात में से एक है। अल्लाह ताला ने सात सुबानों वाला नाम दिया। ये तेरा हजरत उस्मान ने बगैर इसके कि खुदा ने इसका हुक्म दिया हो या रसूलिया ने ऐसा फरमाया हो या अल्फाज है उनके, खुद उन छह को जला दिया, एक बाकी रखा। ये है और एक जो आपके मान जाए उस मकाले को अजीजा ने मैं ध्यान देते हुए एक एक सतर का हवाला मैंने इनका दिया है, ये एक बाकी रह गया। उसने फिर कहा कि बाकी रह गए पढ़ा निकले तीन सैर करने वाले दो, हमने एक मुझे नहीं जिन देखा नहीं उन लगे तीन पैसे दो खोटे एक चलता ही नहीं, जो चलता नहीं उन्होंने खरीदे मारे खान दो खोकलू एक गलता ही नहीं, जो गलता नहीं उन लगे तीन जने खान दो पुठे ही कराईदा ही नहीं। महाजा महाजा खुदा ने उतारे साथ किया वो तो जी जलाया तो बाकी रहा। उसने अगर दुश्मान ने कहा कि उसमें वो गलतियां रह गई, उन्होंने कहा ठीक कर दीजिए, कहने लगे ये अरब आप ठीक कर जाएंगे। फिर उसने लिखा यह है कि 11 गलतियां तो हजार दिन यूसुफ ने की थी, जाले कल किताब वो ला रहता थी, जाले कल किताब वो ला रहता थी। खुदा कह रहा ये कह रहे हैं जी है वो किताब, अच्छा जी जैसा कैसा जी है पैसा, चलिए है तो सही ना। हाँ नहीं हाल तो अभी पता नहीं, वो तो दो आयते है ना जो कुरान में नहीं है, हुक्म उन्हीं का है। अकीदा ये है कि इस मौजूदा कुरान के अंदर ऐसी आयात हैं जिनको पढ़ा तो जाता है उनका हुक्म मंसूख हो गया, कल तो खोता भी ना रहेगा उनका हुक्म मंसूख हो गया। भाई कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, बड़ी सीधी सी बात है, आप रोज कानून के मुताबिक देखते हैं, एक कानून बनता है हुकूमत उस कानून में कोई तरमीम करती है तो उसके लिए अपने यहाँ नतीजे देता है, किसी को अब्रोगेट मंसूख करती है तो उसके लिए निकालती है कि फिलहाल हुक्म इस हुक्म के रूप से मंसूख किया जाता है, उसकी जगह जो हुक्म नाफिज होगा। ठीक है, इस किस्म की कोई चीज कुरान में नहीं है। तो ये आयत मंसूख हो गई है, फिलहाल आयत ने इसको मंसूख किया है, कहीं सारे कुरान में नहीं है। अरे चिंता रहे कि इसके हुक्म मंसूख हो गए हैं, कितने हुक्म अपने जेन में आप अजीजा ने मन ज्यादा से ज्यादा का नक्शा लगा दीजिए और फिर पूछिए कितने हुक्म 500 के मंसूख हो गए हैं। किन्होंने किया? उलमाए किराम ने किया। आप देखते हैं रसिया में कुरान में बांधी जा रही है, देखते हो ये मजदूर तो हुआ जा रहा है, इस भैंस को भी तो कुछ इजाजत हम देते हैं, इसको इतनी भी इजाजत नहीं देते। 500 आयतें मंसूख हैं, साथ में से एक बाकी रहा, जो बाकी रहा उसमें गलतियां थी, जो गलतियों वाला हमारे पास है उसमें से कुछ आयतें हैं जो इसके अंदर आई नहीं है, बाहर की जो है उनमें से कान को मंसूख है। रोजा छन्नी हो जाता है जीवन में, जब भी मैं बाकी ध्यान करता ये आयतें मंसूख कुरान से इन्होंने बाद में बताना शुरू किया खुद, तो ये आयत हमने किस आयत की रूप से मंसूख कराई, वो आगे चलते चलते आयतें उनको खत्म हो गई जिनकी जरिए से मंसूख कराई थी, और बाद फिर भी मंसूख पूरा बाकी रह गई, अर्जा किया गया वो तोड़ा हो गया। आगे पता ना तोड़ा मुक गया वाली गाल जड़ी मैं चली थी, उसने कहा सदाजी घोड़ा हमें भी दे दीजिए, कहा घोड़ा तो तुम ले लोगे, घोड़ा जो है सबके शरीर है पहचानता सवाल के अनारी को गाड़ में नहीं दिया जाएगा, मुझे तो गाड़ी हम तो अनारी है समझिए, बाप दादा को सवारी कहते चले आ रहे हैं तो हमें गाड़ी हो गए पंजाबी हमारे अंगे बच्चे क्या चलिए तो घोड़ा अच्छा है पहले गाड़ी की दी ठीक है, उसने दे दिया घोड़े में बैठ गया, घोड़ा चला उसने एक पीछे से कदम मारा उसके लिए तो वो जीम से गर्दन के, दूसरा उसने टूका मारा वो गर्दन से पनौतियों के ऊपर, तीसरा मारा पनौतियों से नीचे। उसने कहा कि बेटा मैंने कहा था ना नहीं करना आता कुछ, कहने लगे मैं क्या करूँ घोड़ा ही मुझे घोड़ा ही 500 आयतें मंसूख की, आयतें बाकी रह गई जिनको मंसूख करना था, नासिख आयतें जो थी वो खत्म हो गई। अर्जा दिया जाता नहीं कोई बात नहीं, अकेला ये वादा किया कि कुरान की आयत को हदीस भी मंसूख कर सकती, हदीस के मजबूर तो आप जानते हैं, यानी रसूल सल्लम का इरशाद नहीं। आपको मैं बता दूं हदीस किसे कहते हैं, रसूल सल्लम की वफात को 200-250 साल बाद इनफरादी तौर पे कुछ लोगों ने, इमाम बुखारी और मुस्लिम जी ने कहते हैं जो बातें उस जमाने में लोगों की जुबानें में थी ना, हजूर ने ऐसा कहा था, हजूर ने ऐसा कहा था, 250-250 साल बाद बगैर किसी पहले रिटन रिकॉर्ड के जुबानी, इसीलिए उनको रवायत कहते हैं, जुबानी बात जो है, उन्होंने लोगों से पूछ पूछ के कुछ जमा की। वो कहते हैं मुझे कुछ 6 लाख के करीब इस किस्म की बातें मिली, उनमें से 5,93,000 के मुतलक को मैंने खुद महसूस किया कि ये नहीं हो सकती रसूल का, और बाकी जो है जिनके मुतलक इन्होंने अपनी स्वादीत के मुतलक समझा कि ये हो सकती है, वो अपने अलमत जो हो सकती है उनकी स्वादीत के मुताबिक वो है जो सबसे सही तरीन किताब है ना हदीस की, उसमें जो जमा है ये उनका अपना कौल है जाने हदीस, उनकी स्वादीत के मुताबिक जो उन्होंने समझा कि ये हो सकती है उनमें से, ये इसीलिए हदीस को रसूलल्लाह की हदीस नहीं कहते, कौल मंसूब है ना रसूल कहते हैं, यानी वो बात जिसको मंसूब किया जाता है रसूलल्लाह की तरफ, इसीलिए हर हदीस के बाद लिखा हुआ होता है, पहले होता है काला रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने कहा, आखिर में होता है और कमा काला रसूलल्लाह, या जैसे रसूलल्लाह ने फरमाया हो, हर हदीस के मुताबिक ये चीज है। सीधा ये है कि ये जो हदीसें हैं ना ये भी कुरान की आयतों को मंसूख कर सकती है, देखा और रशीद फिर बांधी गई, देखते रहे यार। उसके बाद हमारे यहाँ के सिका वाले हजरात हैं, इन्होंने कहा कि ये कुरान और अहादीस की रोशनी में अहकाम जो हैं इस्लाम के वो हमारे आइम्मा इकराम ने मुरतब कर दिए, ये जो उनके मुरतब करदा अहकाम है इनको फिका कहा जाता है, ये भी सारे मुसलमानों की एक नहीं है, ये मुख्तलिफ फिरकों की अपनी अपनी फिके हैं, ये फिका जो है इसके बाद ये कहते हैं कि ना हमें हदीस की तरफ जाने की जरूरत है ना कुरान की तरफ, कुरान और हदीस में से जो कुछ अहकाम आने थे वो इस फिका के अंदर मौजूद है, अब उस फिका के अंदर कई ऐसे अहकाम हैं जो कुरान के खिलाफ जाते हैं, ये फिका जो इनके यहाँ के बहुत बड़े इमाम है इमाम अबुल हसन उबैदुल्ला फिका हनफी के बहुत बड़े इमाम है, उनका ये फैसला है कि जब आप देखते हैं कि फिका में और इनमें टकराव होता है ये सलाह जाती है हमारी, फैसला ये है कि हमारे किसी इमाम का कोई फैसला या फौज अगर हदीस या कुरान से टकराए तो पहले तो कोशिश करो तो कुरान की ऐसी या हदीस की ऐसी तालीम की जाए तो वो इस फिका के मुताबिक हो जाए, उसकी तावील की जाए, कुछ खेचा ताली जैसे कहते हैं, ताकि वो इसके मुताबिक हो जाए, और अगर ऐसा ना हो सके तो ये समझिए कि वो कुरान की आयत मनसूख है, अमल किसके मुताबिक, आप इस मकाले में देखेंगे एक एक चीज का हवाला मौजूद देखते हैं, और उसके बाद तफासीर आई हमारे यहाँ, उसमें तफासीर में तो पूछ रही कुरान की आयत ऊपर लिखी हुई होती है, जैसे हम खत के ऊपर 786 लिखते हैं और नीचे जो दिन में आए पक्त चले जाते, कुरान की आयत ऊपर होती और उसके नीचे वो किस्से और कहानियां और इसराइलियात और यहूदियों की और मजूसियों की और रिश्ते और उसके और हर एक की गलत में कोई ना कोई रवायत कोई ना कोई कौल किसी बुजुर्ग का और उसका ये सारा कुछ, ये सब कुछ तफसीर है। अकीदा ये कि जो कुछ इन कुतुब तफासीर में आ गया है उससे अलग अगर कोई शख्स आज समझता है तो वो तफसीर जो राय है ये उसकी अपनी राय है, इसको कतन न मानो, ये बुलंद है बेदीन है बिदती है उनकर है, तो कुरान वो हो गया कि जो उन तफासीर के अंदर आ फरमाई अजीजा ने मन तो एक बालिश के बराबर भी वो रस्सी बाकी रहती है जो बांधी गई हो इस पर, भैंस के गले में तो फिर भी वो इतनी बांधता है। मैं और तफसील में नहीं जाना चाहता, और तफसील में मैंने अर्ज किया है कि वो मकाला मेरा जो है उसको आप देखिएगा, वो आ जाएगा बड़ी तारीफ को, ये आप देखिएगा कि उसके बाद आपके यहाँ जो कुरान की तीसरी अजमत है वो बाकी क्या रह जाता है, और उसके बाद फिर आपकी समझ में ये ऐलान आ जाएगा, ऐलान नहीं ये फरियाद है, वकाल रसूल हो जा रखे इन्ना कौम तकद हाजल कुरान महजूर, जो कुरान महजूर थे तो वहाँ मौजूद है, कितनी रस्सियां बंधी हुई होंगी और उसके बाद कितना बड़ा प्रयोग दिया जाएगा कि साहब जितना इस कुरान का तस्करा होता है दुनिया में किसी किताब का नहीं, चूमते हैं, फिर आंखों पे रखते हैं, सिर पे रखते हैं, मुंह पे रखते हैं, एक एक रात में उसका इसका सरीना होता है, सब कुछ इस कुरान का होता है। लेकिन रसूल सल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं खुदा के हजूर में, कुरान मौजूद वो ये है। कुरान आपने देखा तो जुर्म क्या है किया जा रहा है अदालत ए खुदाबंदी में। रसूल सल्लम कैसा चाहते आजम, इसको कुरान ने खुद से ही कहा है, वो शहादत दे रहे हैं खुदा के हैं। और ये सदाकत, ये शहादत को एक्सेप्ट किया, क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए, शहादत देने वाला तो शहादत अमीन है। वकाल रसूल यार ऐसे इतना कौन ने कहा दुहा गल कुरान कब तक की इजाजत देते थे कम आ जाए। शुक्रिया के साथ 5-7 मिनट की रसी उन्होंने नहीं मुझे दे दी। हाँ, और ये कहने के बाद कुरान कहता है वक्ताले का जालना लेकुल्ल नबी अदूम निनल मुजरमी। ये माजरा खुदा की तरफ से शायद ये कहा जाएगा कि रसूल ये माजरा तुम्हारे साथ ही नहीं गुजरा, आज से पहले भी जितने रसूल और नबी आए उनकी उम्मतों ने उनके साथ यही कुछ किया। और ये चीज है जो कुरान बताता है कि अब कुरान को हजूर की भाषा का मकसद क्यों था, जरूरत क्यों पेश आई। कुरान कहता है कि जितने पहले नबी या रसूल आए थे जो दीन लाए थे हमारी तरफ से, वो आए थे जो किताब उन्होंने पेश की थी वो हमारी दी हुई किताब, हमारा ही तजीज मुद्दा दीन था, अपनी तरफ से कोई रसूल नहीं लाया था। लेकिन दावा है कुरान का कि अब इस आसमान के नीचे उनमें से कोई किताब अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है, इसलिए जरूरत है कि वही दीन जो चला आ रहा था अपनी साफ मुनज्जा शक्ल के अंदर मुकम्मल करके मुनज्जा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ले ले और उसके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म कर दे। ये था प्रोग्राम खुदा, यानी पहले नबियों की किताबों के साथ उनकी उम्मतों ने जो कुछ किया उसको उसकी उसको मिटाकर उसकी जगह एक किताब अजीम दी जिसमें सदाकतें खुदा के फरमान वही खुदाबंदी मुकम्मल शक्ल में महफूज शक्ल में रख दी गई। कुरान कहता है कि जो कुछ आप कह रहे हैं रसूल ये कुछ पहली उम्मतों के साथ ही होता रहा। फर्क यह है कि कुरान के मतन की इबादत का जिम्मा तो खुदा ने, इस उम्र ने कहा कि हाँ साहब बेटे के लिए आप मागल ठीक है चांदी रखो, ये कुरान का मतन दे रहा है। वो मतन के मुताबिक भी मैंने आज कर लिया ना, जिसके जो हाथ चारा किए जा रहे हैं तो ये मतन भी पता नहीं वो है या नहीं है, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है इसी इबादत का जिम्मा दिया है ना। कुरान तो सिर्फ इन अल्फाज का नाम नहीं है, कुरान के इन अल्फाज के मफहूम का नाम है ना। उसमें आपने देखा है कि कितनी रस्मियां मानी गई, कहा कि ये चीज तुम्हारे साथ नहीं हुई, हर नबी के साथ हुई। अदूम मिनल मुजरमीन, मुजरम दुश्मन थे खुदा और रसूल के दीन के, दीन की खिलाफ ये लोग करते क्या थे। 2-3 मिनट और दूंगा क्योंकि बात आ गई है दरम्यान में छोड़ने से बच। ये मुजरम जो पहली कौमों के साथ खुदा ने कहा है करते क्या, 22:52 बड़ा अहम हवाला है। यहाँ भी ये अलग अदाले का जालना ले कुल नबी, हर नबी के साथ ये माजरा हुआ। वहाँ है वमा अरसलना मिन कबले का मिन रसूल वला नबी, तुमसे भी पहले कोई नबी रसूल ऐसा नहीं आया जिसके साथ ये माजरा न गुजरा हो। क्या माजरा, इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क शैतान फी उमरियती, उसके बाद शैतान ने यही किया थी, इन्होंने उसकी वही के अंदर खुद कुछ मिला दी, ये किया। तो फिर क्या होता रहा, अयंसफुल्लाहु मा युल्की शैतान सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयाते। तो खुदा यह करता रहा कि जब किसी नबी की उम्मत ने ये किया उसकी किताब के साथ हमने एक और रसूल ले, उस रसूल ने आके जो कुछ इन्होंने उसके अंदर जो कुछ किया था उसको अलग कर दिया हमारे हुक्म से और वही को मुनज्जा शक्ल में फिर दे दिया। उसके बाद उन्होंने फिर ये किया, हमने फिर एक रसूल दे दिया और अब ये रसूल भेजा कि जिसके बाद तो दूसरा रसूल आना नहीं है। इसलिए इस किताब के मुतल्लिक खुदा ने यह कह दिया इसकी हिफाजत का हम जिम्मा लेते हैं, ठीक है किताब का जिम्मा ले ली, यही खुदा की तरफ से आई थी। सुन रखिए
عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہی خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا، مثلہُ ماہُ، اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی نازل ہوا. قرآن تو بار 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 چیلنج دیتا ہے کہ تم اس کی مثل ایک آیت کہیں سے لے آؤ، کہیں سے دس آیتیں لے آؤ، تم کہتے ہو کہ اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی نازل ہوا. تم نے کہا ٹھیک ہے، یہ کتاب محفوظ ہو گئی، تو ہم نے یورپی کی تاریخ کی، اس کے ساتھ اور بھی کچھ ساتھ، اس کی مثل، اسی کی مثل قرآن کی جیسا اور بھی نازل ہوا تھا. بھائی وہ کیا چیز ہے؟ کہنے کی جو حدیث ہے بھائی، جو میں نے ابھی دیکھ مثل ہوں ماں ہوں، وہ تو قرآن نے کہا تھا کہ پہلے یہ کرتے رہے، اس کی وہی میں یہ ملاتے رہے. قرآن کے اندر تو یہ داخل کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں. اس کی عبادت کا ذمہ خدا نے لیا تھا، انہوں نے کہا کہ رستے دلی ہو، یہ کتاب مکمل ہے ہی نہیں. اس کی مثل اس کے ساتھ اور نازل ہوا تھا اور وہ ہے یہ سب. تو یہ اگر ملانا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے ساتھ ملانا ہی نہیں، بلکہ جو میں نے ابھی ابھی عرض کیا ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اس خارج آج قرآن وہی جیل کا عقیدہ ہے، اس میں اور قرآن کے اندر کی وہی میں ٹکراؤ ہو، دونوں ایک دوسرے سے مسجد چلے، تو اس کو سمجھو کہ موکم ہے اور اسے سمجھو منسوخ. پوچھا گیا کہ صاحب اس کی مصنوعت کیا تھی کہ قرآن ایک دیا اور پھر قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ جو اور ہونا چاہیے تھا وہ قرآن کے باہر رکھ دیا، وہ الگ کیوں لیا؟ اسی قرآن کے اندر وہ کچھ بھی داخل کر دیا جاتا ہے. امت کے پاس ایک محفوظ چیز جس کی عبادت کا ذمہ خدا نے لیا وہ تو آ جاتی ہے، اس کے اندر کیوں نہ رکھ دیا گیا؟ اس کی مصلحت اور حکمت سوچیے آپ اپنے لیے. آج کا یہ بھی کیا صاحب جو اتنی بڑی چیز کو چھوڑ سکے؟ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سے ناری ہیں ان کے اندر وہ چیز آ کیسے کرتی ہے؟ حکمت اس کی یہ بتائی مولانا مادھو جی صاحب نے کہ اگر اسے بھی قرآن کے اندر رکھ دیا جاتا، ان کے الفاظ ہیں، تو قرآن انسائکلوپیڈیا بریٹینیا کا جتنا بڑا ہو جاتا، کیونکہ میں جانتا تھا. دیکھا حکمت کتنا بڑا ہو جاتا. شکر کرو بھائی کہہ رہے ہو مقتدان کا جان والے کل نبی جن عدو میرا مجرمین، قرآن ہے عزیز آنے مان، دشمن دین کے خدا کے رسول مجرم کو یہ کیا کرتے تھے. اور رسول سے کہا کہ وقفا بربے کا حادیم و نصیرہ، یہ یاد رکھو ہدایت صرف خدا کی ہدایت، نصرت صرف اس کی نصرت. وقفا کافی ہے، یہ کافی ہے، کسی اور چیز چیز کے ساتھ حادیم ہدایت کے لیے بھی ضرورت نہیں، یہ کافی. اور اس کے بعد آگے پھر اعتراض ہے، ہم الفرقان کی دو یادیں آگے نہیں، آیت 21 تک آ گئے عزیزان من، 32 سال کے آئندہ ہم دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.